زمانوں کی امنگ باب نمبر 39 تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ ویران جگہ میں سکون کے لیے پہنچا، مگر سکون جلد ختم ہو گیا۔ شاگردوں نے تو سوچا تھا کہ وہ اب ایسی جگہ پر آ گئے ہیں جہاں انہیں کوئی پریشان نہ کرے گا، مگر جب بھیڑ کو یسوع مسیح الہی معلم ادھر ادھر ڈھونڈنے کے باوجود نہ ملا تو انہوں نے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ بعض کو معلوم تھا کہ یسوع اور اس کے شاگرد کس طرف گئے تھے، چنانچہ بعض اس سے ملنے کے لیے پیدل ہی روانہ ہو گئے۔ عید فصح نزدیک تھی، اس لیے دور و نزدیک سے لوگ جوک در جوک یروشلم میں یسوع کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے گئے۔ بچوں اور عورتوں کے علاوہ یہ گروہ کوئی 5,000 مردوں پر مشتمل تھا۔ اس سے پہلے کہ یسوع شاگردوں سمیت اگلے کنارے پہنچتا، بھیڑ وہاں موجود تھی، مگر یسوع ان کی نظروں سے بچ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنی جائے مقصود پر جا پہنچا اور وہاں شاگردوں کے ساتھ تھوڑی دیر آرام کیا۔ جب اس نے پہاڑی کے پشتہ پر سے بھیڑ کو آتے دیکھا تو اس کو ان پر ترس آیا۔ گو یہ لوگ اس کے آرام میں مخل ہونے کو تھے، مگر ان کو دیکھ کر وہ نہ پریشان ہوا نہ صبر کو ہاتھ سے جانے دیا، بلکہ ان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر محسوس کیا کہ ان کو میری کتنی توجہ کی ضرورت ہے۔ اسے ان پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو۔ مرقس 43:6۔ اس لیے یسوع خلوت گاہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ آ گیا جہاں وہ اس بھیڑ کی خدمت کر سکتا تھا۔ ان بے سہاروں کا کاہنوں اور حاکموں سے کوئی مدد نہ ملی تھی۔ جب یسوع نے انہیں نجات کی راہ سکھائی تو ان پیاسوں کو یسوع سے زندگی کی شفا کا پانی ملا۔ لوگوں نے یسوع کے مبارک لبوں سے رحم کا کلام سنا جو پر فضل اور بڑا سادہ تھا، بلکہ ان کی زخمی روحوں کے لیے جلاد کے مرہم سے کم نہ تھا۔ اس کا شفا بخشنے والا الہی ہاتھ قریب المرگ لوگوں کے لیے زندگی اور خوشی لایا، اور جو طرح طرح کی بیماریوں کے ہاتھوں نالا تھے انہیں سکھ اور آرام پہنچایا۔ ان کے لیے یہ دن کھائے پیے بغیر بھی ایسا تھا جیسے زمین پر بہشت۔ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ لوگ کلام سننے اور شفا پانے میں اتنے مگن تھے کہ کسی نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا، مگر بھیڑ یسوع کو چھوڑنے کا نام نہ لیتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے بغیر آرام کیے اور کھائے پیے سارا دن خدمت کی۔ وہ بھوک اور تھکاوٹ سے نڈھال ہو گیا تھا۔ شاگرد چاہتے تھے کہ وہ اب کام بند کر دے، مگر وہ اس بھیڑ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا جو اس کی مدد کے لیے آ چکی تھی۔ آخر کار شاگرد یسوع کے پاس آئے اور منت کر کے کہنے لگے کہ اب لوگوں کو رخصت کرے۔ بعض ایک تو دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا، ان کو اب بھیج دے تاکہ ارد گرد کے گاؤں سے وہ کھانا خرید کر کھا سکیں۔ مگر یسوع مسیح نے ان کو فرمایا، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ پھر یسوع نے مڑ کر فلپس سے پوچھا کہ ہم ان کے لیے کہاں سے روٹی لائیں تاکہ یہ کھائیں۔ یہ سوال یسوع نے فلپس کے ایمان کی آزمائش کے لیے پوچھا تھا۔ فلپس نے اتنی بڑی بھیڑ کو دیکھ کر کہا کہ 200 دینار کی روٹیاں بھی ان سب کے لیے کافی نہ ہوں گی۔ پھر یسوع نے پوچھا، کیا یہاں کسی کے پاس کوئی کھانا ہے؟ اندریاس نے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں ہیں۔ یسوع نے حکم دیا کہ وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں میرے پاس لاؤ۔ پھر یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا کہ ان کو 50-50 اور 100-100 کی ٹولیوں میں کر کے گھاس پر بٹھا دیں۔ جب یہ ہو گیا تو یسوع نے کھانے کو لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور اسے توڑا، اور روٹیاں شاگردوں کو دیتا گیا اور شاگرد لوگوں میں تقسیم کرتے گئے۔ انہوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے، اور بچے ہوئے ٹکڑوں کی 12 ٹوکریں اٹھائی گئیں۔ وہ جس نے لوگوں کو سکھایا کہ انہیں کس طرح اطمینان اور خوشی حاصل کرنا ہے، اسے ان کی عارضی جسمانی اور روحانی حاجتوں کا خیال تھا۔ لوگ تھکے ماندے اور پریشان تھے۔ وہاں ایسی خواتین بھی موجود تھیں जिनकी गोद में बच्चे थे, और बाज बच्चे माओं का दामन थामे वहां घंटों से खड़े थे। वो यसु की बातों में इतने मगन थे कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए भी बैठने का ख्याल ना किया। नीज इस बात का भी खतरा लाहक था कि कहीं ये लोग रुखसत होते वक्त जल्दी में एक दूसरे को कुचल ना दें,
क्योंकि ये बहुत बड़ा हुजूम था। चुनाचे यसु ने उन्हें ये कहकर के बैठ जाओ आराम का मौका दिया।
वहां काफी घास थी, लिहाजा सभी आराम कर सकते थे। हकीकी और अशद जरूरत के पेश नजर ही यसु ने मौजजात दिखाए। नीज उसका मंचा होता था कि मौजजे से लोगों को जिंदगी के दरख्त के पास लाए, जिसके पत्तों में कौमों के लिए शिफा है। शागिर्दों के जरिए लोगों तक सादा सा खाना पहुंचाने में बड़ा सबक पन्हा है। गलील के लोगों के लिए जो कि रोटी और मछलियां रोजमर्रा की सादा गजा थी, खुदावन मसीह उनके लिए कोई और मरोगन और लजीज खाना भी मुहैया कर सकता था, मगर उसमें ऐसा सबक मौजूद ना होता जो इस सादा गजा के जरिए यसु अपने हाजरीन को सिखाना चाहता था। अगर आज लोगों की आदात सादा हों और फितरत के तकाजों के मुताबिक जिंदगी बसर करें, जैसे इब्तदा में आदम और हव्वा जिंदगी बसर करते थे, तो आज हर एक के लिए बहुतात से खुराक हो। मगर खुदगर्जी और नारवा खानों की रगबत ने दुनिया पर दुखों की बारिश कर दी है। कोई तो फाकों मर रहा है और कोई घी शुकर के तैयार हलवे में भी कीड़े निकालता है। गरीब तो गरीबतर होते जा रहे हैं, जबकि अमीर अमीरतर। 5,000 को खिलाने से खुदावन मसीह ने फितरत की दुनिया से पर्दा उठाया और उस कुदरत को जाहिर किया जो हमारी बेहतरी के लिए तवातुर से काम करती रहती है। जमीन से फसल तैयार करना ये खुदा का रोजमर्रा का मौजजा है। फितरत के नुमाइंदगान के जरिए जो खिदमत ली जाती है, भीड़ को खाना खिलाने से वही मकासिद हासिल किए गए। इंसान जमीन को तैयार करते और बीज बोते हैं, मगर जो बीज को उगने और बढ़ने में मदद करती है वो जिंदगी खुदा से सादिर होती है। ये धूप, बारिश और हवा है जो जमीन की पैदावार से करोड़ों को आसूदा करते हैं। इंसान तो महज उसके हम खिदमत हैं, मगर इंसान भूल जाता है कि ये खुदावंद है जो सब कुछ पैदा करता है। यूं इंसान खुदा को जलाल नहीं देता और ये सारी ताजीम इंसान को देकर अपनी खुद गर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। यूं खुदा की ये बरकत उनके लिए लानत का बायस बन जाती है। खुदावन चाहता है कि हम उसकी नेमतों को पहचाने। इन्हीं मकासिद को हासिल करने के लिए खुदावन मसीह ने मौजजात दिखाए। जब भीड़ ने पेट भर के खा लिया तो फिर भी काफी खाना बचा रहा। इस पर खुदावन मसीह ने फरमाया, बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। यूहन्ना 12:6।
सिर्फ टुकड़ों को टोकरियों में रखना न था, बल्कि उसमें भी बड़ा भेद पिन्हा था। पहली बात तो ये कि कोई चीज जाया ना की जानी चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें वो सब कुछ जमा कर लेना चाहिए जो इंसानी जरूरत को पूरा कर सके, यानी जो उनकी भूख और प्यास को तस्कीन दे सके। इसका इतलाक रूहानी चीजों पर भी होता है। जब 12 टोकरियां भरी गईं, तो लोगों को अपने अजीज, दोस्त और अहबाब याद आए जो घर पर थे। लोग चाहते थे कि इस रोटी को उन्हें भी दें जिस पर यसु ने बरकत बख्शी थी। इस इलाके में जहां कहीं वो लोग गए, इस बच्चे हुए खाने को भी साथ ले गए। चुनाचे जो यहां इस ज़ियाफ़त में हाजिर थे, उन्होंने उस रोटी से भूखी और प्यासी रूहों को तस्कीन पहुंचाई जो आसमान से उतरी थी। इलावा जी उन्हें खुदा के उन अजीब गरीब कामों के बारे गवाही देने का भी मौका मिला जो उन्होंने देखे थे, और जो तालीम उन्होंने यसु से पाई उसको भी उन्होंने अपने दोस्तों के सामने दोहराया। इससे हम ये सबक भी अखज़ कर सकते हैं कि जो कुछ इंसान की भलाई और अबदी निजात का मूजिब है, उसे हरगिज़ ज़ाया ना किया जाए। रोटियों का मोजज़ा खुदा पर भरोसा और इन्हिसार रखने का सबक सिखाता है। जब खुदावन मसीह ने 5,000 को खिलाया, कोई खाना ना था, कोई जरिया भी दिखाई ना देता था। यहां उसके गिर्द बयाबान में खाने वाले बच्चों और बहनों के अलावा 5,000 मर्द थे। बेशक उसने इतने ज्यादा लोगों को दावत देकर ना बुलाया था, वो तो अपनी आजाद मर्जी से वहां पहुंचे थे, मगर वो जानता था कि इतनी देर तक उससे कलाम सुनने के बाद वो जरूर भूखे और मांदा हो चुके हैं। और वो ये भी जानता था कि मेरे सिवा उनकी ये जिस्मानी जरूरत कोई और पूरी नहीं कर सकता। इसके अलावा ये तमाम लोग अपने अपने घरों से बहुत दूर थे, रात छाने को थी, अक्सर के पास खाना खरीदने को पैसे भी ना थे। वो जिसने उनकी खातिर 40 दिन बायाबान में फाका किया, उन लोगों को भूखा प्यासा वापस भेजने पर राजी ना था। चुनाचे खुदावन खुदा ने जहां मसीह यस्सू था वहीं खाना भेज दिया, क्योंकि उसने अपनी हर जरूरत के लिए अपने बाप पर इन्हिसार कर रखा था। जब हम ऐसी तंगदस्ती का शिकार हो जाए तो हमें खुदावन पर इन्हिसार करना है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें हिकमत और फहम व फरासत का मुजाहिरा करना है, ताकि ना हंजारी से हम आजमाइश में ना पड़ जाएं। हमें खुदा के वसाइल को नज़रअंदाज करके मुश्किलात का शिकार नहीं होना है, और ना ही खुदा की दी हुई सलाहियतों और कुवा को गलत इस्तेमाल करना है। खुदा के कारगुजारों को तो उसकी दी हुई हिदायत पर अमल पैरा होना अजहद जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे वसीला से बरकत पाए, तो लाजिम है हम खुदा की तजावीज की पैरवी करें। अगर हम अपने ख्यालात के मुताबिक तजावीज बनाएंगे तो खुदावंद हमें हमारी गलतियों में गलता रहने देगा, लेकिन अगर हम उसकी हिदायत पर अमल करते हुए मुश्किल मकामात पर आ जाएंगे तो वो हमें वहां से रिहाई बख्शेगा। पस्त हिम्मती
के वक्त हमें हार नहीं मानना है, बल्कि उससे मदद तलब करना है जिसके हुक्म किताबे हर तरह के वसाइल हैं। हो सकता है बाज़ुकात हम हालात का शिकार हो जाएं, मगर उस वक्त भी हमें पूरी तरह खुदावंद खुदा पर भरोसा रखना है। उलझन की शिकार जो भी रूह खुदा विंद खुदा के पास आएगी, वो उसे आजमाइश से निकालना जानता है। खुदावंद खुदा ने अपने बंदा यसैया बनी की मार्फत फरमाया है, अपनी रोटी गरीबों को खुला, नंगों को कपड़ा पहना, आवारा और मिस्कीनों को अपने घर में उतार। यसैया 7:58-10। हमारे नजात दहिंदा का ये हुक्म है कि तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मनादी करो। मरकुस 15:16।
मगर ये देखकर हमारा कमजोर दिल बैठ जाता और ईमान कमजोर हो जाता है कि हमारे वसाइल बहुत ही महदूद हैं और जरूरत बहुत ही बड़ी। अंद्रियास की तरह हम 5 रोटियों और 2 मछलियों को देखकर कह देते हैं कि ये इतने लोगों के लिए काफी ना होंगी। जो कुछ हमारे पास है अक्सर हम उसे खुदावन को देने से हिचकिचाते हैं, उसे हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करने से भी डरते हैं। मसीह यीशु फरमाता है कि तुम ही उनको खाने को दो। उसका हुक्म ही वादा है और उसके पीछे वही कुवत है जिसने भेड़ को नदी के किनारे खाने से सैर किया। भूख से निढाल भेड़ की आर्जी जरूरत को पूरा करने में उसके अपने कारगुजारों के लिए एक अमीक और रूहानी सबक पाया जाता है। यीशु मसीह ने अपने आसमानी बाप से पाया, उसने अपने शागिर्दों को दिया जिन्होंने भेड़ को दिया, और फिर भेड़ ने एक दूसरे में तकसीम किया। चुनाचे वो सब जो यीशु मसीह में मुत्तहिद हैं उससे जिंदगी की रोटी लेकर दूसरों में तकसीम करते हैं। खुदावन बाप पर मुकम्मल भरोसा करते हुए मसीह खुदावन ने वो थोड़ी सी रोटियां ली। उसने अपने शागिर्दों को खाने की पहले दावत ना दी, बल्कि उनको हुक्म दिया कि दूसरों में तकसीम करें। खाना उसके हाथ में अफजू हो गया, और उसी तरह यस्सु से लिया हुआ खाना शागिर्दों के हाथ में बढ़ता ही गया। यूं वो थोड़ी सी रोटी इतनी बड़ी भेड़ के लिए काफी ठहरी। जब लोग खा चुके तो खुदावन मसीह और उसके शागिर्दों ने बाद में मिलकर आसमानी रोटी को खाया। शागिर्द अवाम और मसीह खुदावन के दरमियान राब्ता की कड़ी बन गए। ये शागिर्दों की बड़ी हिम्मत अफजाई का बायस हुआ होगा। खुदावन मसीह तमाम कुदरत और कुव्वत का मंबा और मरकज है। उसके शागिर्दों को उससे सब कुछ हासिल करना था। जो जी शऊर और रूहानी होते हैं, जो कुछ वो खुद पाते हैं दूसरों के साथ जरूर बांटते हैं। हम अपने आप से किसी को कुछ नहीं दे सकते, हम वही कुछ लोगों को दे सकते हैं जो हम यस्सू से पाते हैं। नीज हमें सिर्फ उसी वक्त मिलता है जब हम दूसरों को देते हैं,
जिस तवातुर से हम देते हैं उसी तवातुर से हासिल करते हैं, और जितना ज्यादा हम देते हैं उतना ही ज्यादा हम पाते हैं। यूं हम मुसलसल ईमान और भरोसा रखते, खुदावन से पाते और अपने भाई बंदों में तकसीम करते रहते हैं। खुदावंद यसु मसीह की बादशाही की तामीर और इस्तवारी जरूर आगे बढ़ेगी। बेशक ऐसे दिखाई देता है कि ये काम बड़ा धीरे धीरे आगे को सरक रहा है, और रास्ते की मुश्किलात देखकर ऐसे मालूम होता है कि कोई तरक्की और कामयाबी नहीं। ये खुदावंद का काम है और उसकी तकमील के लिए वो खुद वसाइल मुहैया करेगा। वो खुद ईमानदार शागिर्द भेजेगा जिनके हाथ में खाना फाका कश भेड़ के लिए अफरों हो जाएगा। खुदावन उनसे भी ला ताल्लुक नहीं जो बर्बाद होने वाली रूहों को जिंदगी का कलाम देते हैं, और फिर ये बच जाने वाली रूहें उसके इवज दूसरी भूखी रूहों को जिंदगी का कलाम पहुंचाती हैं जो उनकी तरह बर्बाद हो रही थीं। खुदा की खिदमत में इंसान के लिए
जबरदस्त खतरा है जब वो अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करके समझना शुरू कर दे कि वो ये या वो काम बजाते खुद कर सकता है। यूं यसू उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। उसे सिर्फ उस पर भरोसा करना चाहिए जो तमाम हिकमत और कुव्वत का मंबा है, क्योंकि इंसानी हिकमत या इंसानी ताकत और नफरी पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि खुदा के काम की कामयाबी हमारी लियाकत या तादाद पर मबनी नहीं बल्कि पुख्ता ईमान पर मौकूफ है। अपनी शख्सी जिम्मेदारियां और फराइज मनसबी हमें खुद निभाने चाहें, और उन सब के लिए जाती और शख्सी कोशिश की जानी चाहिए जो यस्सू से नावाकिफ हैं। ये जिम्मेदारी ये समझते हुए किसी और पर न डालें कि वो आपसे ज्यादा काबिल है, बल्कि आपको काबिलियत के मुताबिक खिदमत अंजाम देना चाहिए। और जब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि इन सब के लिए हम कहां से रोटियां खरीद कर लाएं कि ये सैर हो सकें, तो आपका जवाब बेएतकादी पर मबनी ना हो। जब शागिर्दों ने मसीह की हिदायत सुनी कि तुम ही उनको खाने को दो, उनके जहनों में तमाम मुश्किलात ने जन्म लिया। सबसे पहली मुश्किल कि क्या हम आसपास के गांवों में जाकर उनके लिए रोटियां मोल लें। आज जब लोग जिंदगी की रोटी को तरस रहे हैं, क्या हमारा ये जवाब होगा हम किसी को दूर दराज से बुलाएं ताकि उनको जिंदगी की रोटी दे? यस्सू ने क्या फरमाया था? उनको बिठाओ। वहीं उसने उनको खिलाया। चुनाचे जब आप भेड़ को देखते हैं कि उनको तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो याद रखिए कि यस्सू वहां है। उसके साथ राब्ता कायम कीजिए, अपनी जो की रोटियां उसके पास ले आए। खुदा की खिदमत के लिए हमें जराए बहुत महदूद दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम ईमान से आगे बढ़ेंगे और खुदावंद की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा करेंगे तो खुदान महदूद वसाइल को लामहदूद कर देगा। खुदा अपने काम की तकमील के लिए खुद वसाइल मुहैया करेगा। वो ईमानदार और मुखलिस कारगुजार को बरकत देगा। थोड़े को भी अगर हम अकलमंदी से खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। आपको याद होगा कि थोड़ी सी खुरश यस्सू के हाथ में इस कदर अफजों हो गई कि खत्म होने का नाम ना लेती थी, यहां तक कि तमाम भूखों का पेट भर गया। अगर हम जुलजलाल के पास जाएंगे जो तमाम वसाइल का मंबा है और ईमान से उसे थामे रखेंगे, तो अपनी खिदमत में बुरे हालात के बावजूद कायम रहेंगे और दूसरों को जिंदगी की रोटी देने के काबिल ठहरेंगे। खुदावंद खुदा रिफरमाता है,
दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। लूका 38:6। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, वो जो बरकत के साथ बोता है वो बरकत की फसल काटेगा। खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। उसने बखेरा है, उसने गुनाहगारों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अबद तक बाकी रहेगी। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। और तुम हर चीज को वफरात से पाकर सब तरह की सखावत करोगे जो हमारे वसीया से खुदा की शुक्रगुजारी का बाइस होती है। 2 करंथियों 6:9-11।